أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. تو آئیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دور قرآن 2024، اور آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 4 کریں گے، جو انتہائی خوبصورت پارہ ہے، لن تنالوا البر. ہم اپنے آج کے اس پارے کو اس سال کے تھیم، جو کہ ہم سب روز جان رہے ہیں، اس کے ساتھ کریں گے. اس سے پہلے کہ آگے جائیں، پچھلے پارے کا تھوڑا سا خلاصہ. ہم نے پچھلے پارے میں، یعنی پارہ نمبر 3 میں، سورۃ بقرہ کی آیت 253 سے 286 کی، جو کہہ لیجئے کہ پرائم تھا پوری سورت کا، اور اس سے پتہ بھی چلا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ باطل پرست لوگ اس کتاب نہیں لاتے. تو ہم نے احکامات کو دیکھا، خاص طور پہ پھر تیسرے پارے میں انبیاء کرام کی فضیلت پہ بات ہوئی، اور اللہ ایمان والوں کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، وہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ کیسے ایمان والوں کی دوستی کرتا ہے. آج اس پارے میں ہم اس کی عملی تعبیریں دیکھیں گے. ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، ہر دن کے پارے کے ساتھ پچھلے پارے کا خلاصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ رب جڑ جائے. تو پچھلے پارے میں اللہ نے انبیاء کرام کی فضیلت بیان کی، اس پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور آپ کو جو خوبصورت ساتھی دیے، اس کا تذکرہ. پچھلے پارے میں اللہ ایمان والوں کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا کہا گیا. یہاں اس پارہ 4 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں جھلکیاں دکھا رہے ہیں کہ کیسے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. پچھلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی حکمتوں کی بات تھی، کہ کیسے مختلف حالات میں انہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور سنا، جو ایک قسم کی نشانی تھی کہ آپ جتنا غور و فکر تدبر کرتے جاتے ہیں، اتنی آپ کے اندر حکمت آتی جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ حکمتیں سوجھیں گی جو کسی بھی جگہ مل کر کام کرنے کے لیے ضروری ہیں، جس کو آج کے دور میں آپ ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں یا ٹیم مینجمنٹ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پچھلے پارے میں انفاق فی سبیل اللہ کا شاندار اجر تھا. یہ پارہ شروع ہی لن تنالوا البر سے ہو رہا ہے، اور پھر پچھلے پارے میں رب العالمین کی کامل قدرت کی نشانیاں ہم نے دیکھی تھی سورۃ آل عمران کی 1-91 آیات کی روشنی میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج نصر من اللہ و فتح قریب، جو اس پارے کا بھی تھیم ہے، یعنی آج کے پارے کا تھیم لکھ لیجئے، مدد بھی اللہ کی طرف سے اور فتح ہو کہ نہ ہو، ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو اس پارے کا تھیم فتح اور شکست مومن کا مطلوب نہیں، کیونکہ مومن نہ فتح کے لیے لڑتا ہے نہ شکست کے لیے، ورنہ تو فتح کی صورت میں خوب جوہر دکھائے گا اور دوسری صورت میں پیچھے ہوگا. آج ہم اس پورے پارے میں دو واقعات ایسے پڑھنے والے ہیں جو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو بتانے کے لیے، کہ جب سچا ایمان ہوتا ہے نا، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ فلاں کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کسی اور مقصد کے لیے؟ تو اس کا بس ایک ہی نتیجہ ہے کہ رسپانس اچھا ملے یا برا ملے. اگر آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لوگ ہی نہیں آئے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر میرے جانے سے کیا ہوگا؟ نہیں نہیں یہ نہیں نہیں. تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت مسلمہ کے عروج کے دور میں جب تک لوگوں نے اس پہ کام کیا، تو لوگوں نے مسلمانوں کو کبھی اس وقت اس دور میں ٹیررسٹ نہیں کہا، کیونکہ وہ لاجیکل اور وہ حقیقی طور پہ دین کو پریزنٹ کرتے تھے پہلے، اور اس کے بعد جب رستے میں کسی نے کوئی فتنہ اٹھانا چاہا تو انہوں نے اس سے جنگ بھی کی. آج ہمیں کیوں باتیں سننی پڑتی ہیں غیروں سے؟ کیونکہ کال اور فیل کا تضاد ہے. ہم لگتے ہی نہیں وہ کہ جن سے وہ ڈریں یا جن سے وہ لڑیں. اور آج خوبصورت سی ایمان کی طاقت ہم بہت ساری اور چیزوں میں دیکھنے کے ساتھ، جو آج کے ہمارے دو مین پوائنٹ ہوں گے، وہ اصحاب احد ہیں. یہ وہ پارا ہے کہ جو آپ کو رلا دے گا، آپ کو ہلا دے گا، अगर आपने इसको पूरे फोकस और पूरी दिल जमाई से सुना और मैं आपको दे सकी। दूसरी बात यह है कि खमराउल असद, ये है वो बात जिसको आप सुनेंगे भी कि ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे। तो आज के पारे के थीम में ये पुरसरारियत है, आप इसके थीम में ये भी लिख लीजिए कि ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे। क्यों सहाबे करहम हर मैदान में आगे और आज हम मुसलमान हर मैदान में पीछे, इल्ला माशाल्लाह, जो अल्लाह जिस चीज़ में हमें आगे कर दे हम उसी में आगे हो जाएं। तो बहरहाल बड़े ही खूबसूरत सा पारा है और आपको मुझे इसमें पैगाम यही दिया जा रहा है कि जब तुम अल्लाह ताला को दिल की गहराइयों से पा लेते हो तो फिर तुम्हें दुनिया में कोई रुकावट जो तुम्हारे और रब के बीच में आए वो बुरी लगती है और आप उसको उठाकर अल्लाह ताला के एक हुक्म पर ऐसे चल पड़ते हो जैसे कोई जानवर अपने मालिक के इशारे पे जाता है। और जितना ज़्यादा आपका मेरा दिल इस्लाम और ईमान की मोहब्बत में चूर होता जाता है, हमारे लिए वो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस एक और छोटी सी चीज़, और वो क्या है कि जितना ज़्यादा हम अपना मुहासबा करते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को देखते जाएंगे, फ़ायदा हमें उतना ही होगा। तो आइए देखते हैं ये पारा, पारा नंबर 4, जिसको लन तनालुल बिर्रा भी कहते हैं। ये पारा सूरत आले इमरान की आयत नंबर 92 से शुरू होता है और इसमें ना सिर्फ ये कि पूरी सूरत आले इमरान होगी अंत तक, बल्कि सूरत निसा की इब्तदाई आयात यानी बहुत ही अहम अहकाम की सूरत में, जिसमें आइली ज़िंदगी घरेलू ज़िंदगी के मसाइल भी हैं और विरासत की बातें भी हैं और तौबा की भी बात है। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको आसान कर दे। चलिए शऊर के साथ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पारा नंबर 4, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकु मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। आयत नंबर 92 से 101, सूरत के एतबार से देखे तो रुकू नंबर 10 है। टॉपिक लिखिए महबूब के लिए महबूब तरीन चीज़। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह की राह में खर्च ना करो हरगिज़ भलाई ना पाओगे, और तुम जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह इसे बखूबी जानता है। तौरात के नज़ूल से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, इसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। इसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे वही हैं जालिम। कह दीजिए कि अल्लाह सच्चा है, तुम सब इब्राहिम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो जो मुशरिक न थे। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का शरीफ में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है, जिसमें खुली खुली निशानियां हैं, मुकाम इब्राहिम है, और इसमें जो आ जाए वो अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर जो के इसकी तरफ राह पा सकते हैं इस घर का हज फर्ज कर दिया है, और जो कोई कुफर करे तो अल्लाह ताला इससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। ज़रा से इस आयत पे वो लोग कान लगा दें जिन्होंने इस्तेआत और पूरी खूबियां और पूरे रिसोर्सेज होने के बावजूद इस वक्त तक हज नहीं किया। ये वो आयत है कि जो जानबूझकर हज से दूर रहने वाले शख्स को क्या बुरी नवीद दे रही है। अल्लाह ताला हम सबको उस घर का हज और उमरा नसीब फरमाए। आप कह दीजिए कि अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों के साथ कुफर क्यों करते हो? जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इस पर गवाह है। इन अहले किताब से कहो कि तुम अल्लाह की राह से लोगों को क्यों रोकते हो और इसमें ऐब टटोलते हो, हालांकि तुम खुद शाहिद हो अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। और फिर पुकार है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। आयत 100 सूरत आले इमरान। ऐ ईमान वालों, ज़रा सा कान लगा कर सुनिए कि अल्लाह की पुकार आपके मेरे कानों पर क्या बोझ डालती है, या हमारे दिल मसरूर हो जाते हैं इस बात के साथ कि हमारा रब हमको पुकार रहा है और हम अपने रब की बात सुन रहे हैं। क्या कहा? अगर तुम अहले किताब की किसी जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के बाद मुर्तद यानी काफिर बना देंगे। गोया ये जाहिर है कि तुम कैसे कुफर कर सकते हो, बावजूद इसके कि तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूत थाम ले तो बिला शुबा इसे राह रास्त दिखा दी गई। सुबहान अल्लाह, एक एक लफ्ज़ सोने के पानी से लिखने के काबिल, और ये भी मैंने मुहावरतन बोला। हकीकत यह कि अल्लाह के इस कलाम को ना आप समझ सकते ना मैं समझा सकती, हम सब यहाँ कोशिशों में हैं। इसका तर्जुमा तो क्या करेगा कोई, इसकी तर्जुमानी ही सिर्फ हो सकती है। तो आपने देखा कि पहले ही रुकू में ईमान से मुतल्लिक दो आयात आईं, कौन कौन सी? पहली आयत 97, वमन दखलहू कान आमिनम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। जो इस घर में दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। तो लिखिए टेंशन फ्री जोन, स्ट्रेस फ्री जोन, वो जहाँ जाकर घबराहट को भी घबराहट होने लगती है। ये वो जगह है सारी दुनिया के सताए हुए, थके हुए, काम कर करके हफे हुए लोग जब जाते हैं कहते हैं वापस आने को दिल नहीं करता। बाज़ दफ़ा देखा गया कि दुनिया के वो खित्ते जहाँ बहुत ही सहूलतें भी हैं, बड़ी नेमतें भी हैं, वहाँ लोग वहाँ भी जाकर ज़्यादा खुश होते हैं। आज तो हज भी इतना लग्जरियस हो गया कि हमें उसके अंदर भी जाकर कई दफ़ा सोचना पड़ता है कि हम हज पे आए हैं या हम किसी फन के लिए आए हैं, लेकिन हकीकत है कि वहाँ एक सुकून है। और आप यकीन करें कि अगर आपकी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के साथ जुड़ी हुई ज़िंदगी है ना, तो आप यही फीलिंग हर वक्त महसूस करते हैं। बल्कि मैं आप सबको कहूँ कि कितने पैसे लगाकर लोग हज उमरे पे जाते हैं, कई दफ़ा बेचारे पहली दफ़ा जाने या ना पता होने की वजह से हफ तफके आ जाते हैं और कई गलत काम करके आते हैं और बाद में उनको रिग्रेट होता है। आप इस जगह पे भी जहाँ हम बैठे हैं, आप इसके सुकून को महसूस करें। अल्लाह के घर में मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कई मुख्तलिफ जगहों पे मौका अल्लाह ने दिया तो दौरे कुरान हुए। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े शादी हॉलों में हुए, थाउजेंड्स में लोग होते हैं वहाँ। लेकिन जो मज़ा जो आपको अल्लाह के किसी घर में बैठ के कुरान पढ़ाने का आता है, मैं इसको इस साल बहुत इंजॉय कर रही हूँ। एक अजीब सी कैफियत, आप तो यहाँ से उठ के चले जाते हैं, मेरा तो दिल ही नहीं करता जाने को। और बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा है कि हम उम्रे पे आए हुए हैं। मैं दिन में पढ़ाती हूँ और बाकी सारी नमाजें भी इधर, और कल तो हम यहाँ इस वक्त के गए हुए रात मगरिब पे गए, क्योंकि अपना घर। और मुझे इतनी वो हदीस याद आती है ना कि मस्जिद मोमिन का घर है, जिसका दिल होटल्स में लगता है वो होटल में खुश होगा, जिसका रेस्टोरेंट में दिल लगेगा वो वहाँ होगा। लेकिन यकीन कीजिए, ये आपके जो मेरे घर बार है ना, ये वहमे गुमा हैं कि ये बुत हैं, सिर्फ वो सिर्फ रात गुजारने की चीज़ें हैं। लेकिन मक्का के अंदर जाकर अगर आप में से कोई नहीं जा सका तो आइए ज़रा इस इल्म की महफिल में बैठ कर देखिए, और जो लोग यहाँ आकर बैठते हैं वो खुद इसकी गवाही देते हैं ना कि आप लोग कितने घर से परेशान और स्पेशली सफ़र से गुजर कर कितना आते हैं। ये तो अल्लाह ताला जजाए खैर दे कि हम लोग इधर करीब ही हैं, वरना मैं सोच रही थी कि रोज़ अगर इतनी दूर से रोज़ आना होता और आके मैंने पढ़ाना होता, पता नहीं मैं क्या करती। लेकिन अल्लाह अपने कामों पे कादिर है, वो करवा लेता है। दूसरी आयत देखें तो आपको सूरत आले इमरान की 100 आयत दिख रही है। आपके नाम आपके रब का एक खत आया है, एक पैगाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या ऐ ईमान वालों तुम्हारे ईमान खतरे में है। अगर तुमने गैरों की बातें सुनी, तुमने अपने बच्चों को गैरों के रंग रंग रूप में पाला पोसा और उनको दुनिया के साथ सीधा रखने के लिए इतना तुमने उनको उस रंग में रंग दिया कि एक दिन आएगा कि वो क्या करेंगे, यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम। अल्लाह ना करे कि हमारी नस्लों के साथ कोई ऐसा करे या हमारे साथ कोई ऐसा मामला हो। लेकिन हकीकत है कि ईमान सबसे कीमती दौलत है। आपको इस साल के दौरे कुरान से फील हो भी रहा है, और जब ये पूरा हो जाएगा ना तो फिर तो आप इसको मज़ीद और भी समझेंगे कि वाकई ये सच है कि ये ईमान की दौलत हमारी बाकी दौलतों से ज़्यादा कीमती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इस हिस्से में हमें क्या मिला कि लन तनालुल बिर्रा। आप देखिए, मैंने आपने आयत सुनी, पता नहीं हमारी तवज्जो भी उसमें गई कि नहीं गई, लेकिन इसी आयत ने सहाबे कराम में से बहुत से लोगों के नाम, जो आप तफसीर में पढ़ते भी हैं, अबू तलखा भी आते हैं इसमें, जिन्होंने अपना बाग दे दिया, फिर इसी तरह हज़रत इब्ने उमर ने, सब ने दिए। एक लंबी दास्तान है वो, आप इंशाल्लाह बाद में जब भी कभी तफसीलात हम पढ़ेंगे सुनेंगे आप वहाँ देखेंगे। लेकिन जो बात बहुत ज़रूरी है इस वक्त, हम क्या करें। आप देखिए कि जब भी बात आती है ना लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते, जब तक तुम मनपसंद चीज़ ना दो तो हमारे जहन में प्राइस टैग आने लगता है, अच्छा कीमती चीज़ ने तो लिखेगा आज यहाँ हत्ता तुन फिकु मिम्मा तो हिब्बुन, यानी मिम्मा तो हिब्बुन में कीमत नहीं आती। क्या आपने $1,000 की चीज़ दे दी या 100 की दी, यहाँ इमोशनल टैग है। कुछ चीज़ें बंदे को बड़ी अजीज होती हैं, ख़ास तौर पर शादी के साथ, ये उन्होंने मुझे तब दी थी, ये मुझे पहली दफ़ा देखा था, ये मुंह दिखाई थी, ये वो देखने आए थे, तो ये है वो चीज़ जिसको देते हुए दिल खिंचे वो आपकी मनपसंद है। और फी सबीलिल्लाह देते वक्त अगर आप उस वक़्त गम से ज़्यादा खुशी हो तो याद रखिए ये आपके ईमान की अलामत है। आप करके देखिए, जो चीज़ आपको पसंद है जाओ दे दो, ये भी जाओ, ये भी स्कूल को दे दो, जाओ ये भी स्टॉल पे रख दो, ये भी कर लो, ये अच्छी लगी जाओ तुम ले लो। ये वो कैफियत हैं जो अंदर की रास्ते की रुकावटें दूर करती हैं। ये जो आपके मेरे रास्ते के रोड़े और ये जो ब्रेक है ना, वो स्पीड ब्रेकर जिसको कहते हैं, लिखिए लन तनालुल बिर्रा का जिम बनाइए, स्पीड ब्रेकर्स को तोड़ दो तो तुम फस्तबिकुल खैरात का हक अदा करोगे। पिछले पारों में भी गुजरा, पहले पारे से लेके अब तक दोहराने का टाइम नहीं है, हर पारे में आपको मुझे एक पैगाम मिल रहा है, नेकियां कर लो, फ़फ़िरु इलल्लाह। आगे हम पढ़ेंगे सूरह ज़ारियात में, फ़स्तबिकुल खैरात सूरह बकरा में पढ़ गया, आज इस पारे में आप पढ़ेंगे कि सारी विला मग़फ़िरत है मेरे रब्बिकुम। मैं सोचती हूँ कि लोग कितना अपने ऊपर जुल्म करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेकार मशगलों में लगाकर और ऐसी चीज़ों में खपा कर तपा कर के जहाँ से मिलना मिलाना कुछ नहीं, तो अल्लाह ताला को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, उसका सब कुछ है, वो दे सकता है वो ले सकता है, लेकिन आपके फ़ायदे की खातिर। आप कभी भी हाथ में बड़ा सा बैग उठाकर भागने की कोशिश करें ना, तो 5 मिनट के बाद आप थक जाएंगे, हाथ में अपना बैग अच्छा नहीं लगता। जिनको भागना होता है वो हाथ खाली रखते हैं, सिर्फ उनके पास दो बैग होते हैं छोटे छोटे जिसके साथ ज़िंदगी की सर्वाइवल पूरी हो जाए। तो ये लिख लीजिए, अल्लाह ने आपको मुझे अपने दीन की मदद के लिए नहीं कहा कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ दोगे मुझे तुमसे बैर है। जैसे कुछ ससुराली रिश्तों में ऐसे मामला होते हैं ना, बस जो चीज़ मुझे पसंद है वही नंद को दे दो जी, यही अम्मा को दे दो जी, है ना। अल्लाह ताला सिर्फ ये देखना चाहता है कि तुम्हारा दिल अभी भी इन चीज़ों में है या मेरे साथ है। आपकी मेरी वो छोटी सी चीज़ से होना क्या दीन को फ़ायदा, लेकिन आपको फ़ायदा क्या होगा कि वो क्लॉग निकल जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि पानी नहीं जा रहा, सिंक बंद हो रहा है, बाद में प्लम्बर आता है वो क्या कहता है, ये क्लॉग आ गया था। ये क्लॉग्स निकलते हैं ना, बड़ा आसान लगता है, डक्का के लिख लें पंजाबी का डक्का। जब आपका ये डक्का खुल जाता है ना, उसके बाद तो जो देने में मज़ा आ रहा होता है उसको आप सोच ही नहीं सकते। फिर आपके पास ढेरों ढेर सामान नहीं होता, जो भी होता है वो आपका ही नहीं होता, आप बल्कि एक जगह से उठाकर जब दूसरी जगह डालते हैं आप कहते हैं अल्लाह मुझे किस आजमाइश में डाल दिया, ये बंदे ने क्यों मुझे मुश्किल में डाल दिया। आप यकीन करें हमारे स्कूल पे आजकल भी एक रमज़ान सेल लगी है, ये गवाह हैं सिस्टर, मोहब्बतें हैं उसमें, प्यार है, किसी का लाड है, किसी का चाव है। सिर्फ वो चीज़ जिसके बगैर नागुजीर है या किसी की मोहब्बत में उसको एक आध दफ़ा यूज़ कर लिया, क्यों कहाँ क्यों, इसलिए कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु, मोहब्बत के साथ, क्योंकि अल्लाह को मेरे माल की आपके घर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन चीज़ों में खो जाते हैं ना तो फिर हमारा वक्त चला जाता है। फिर उसके बाद अगली बात इसमें लिखिए कि अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं जाता, वो इससे कई बेहतर चीज़ हमें दे रहा होता है। और यकीन करें जितना देते हैं उतना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया ना लाइन शकर तुम लाजीद अन्नकुम, ये शुक्र का एक बेहतरीन इजहार होता है। मैंने देखा है लोग पिछले 5-5 साल पुराने कपड़े 10-10 सफ़ा पहनते फिर भी कहते हैं अभी क्यों दें, अभी तो नया लगता है, पैसा भी लगा है, माल भी लगा है और इमोशनल अटैचमेंट है, और आपके पास 2-4 महीने बाद ही कोई चीज़ ही नहीं होती, आप तो एवर न्यू है ना। तो ये चीज़ें समझ आती हैं ज़रा वक्त के साथ। दूसरी बात, मनपसंद चीज़ देना दर्जात की बुलंदी और अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, और अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता। और इसी तरह से अपने अमाल को अल्लाह ताला के लिए खालिस करना हम सीख रहे हैं, फेथ इन एक्शन के पॉइंट्स। अपनी अजीज़ तरीन जब अल्लाह के रास्ते में दें तो रोएं नहीं, मुस्कुराएं और कहा करें रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, और साथ ही साथ उसमें दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे दिए को बरकत वाला बनाकर उस चीज़ में लगा दे जिसके लिए मैंने दिया। और इसी तरह से फिर आप अल्लाह के दीन को थामते रहेंगे। आगे जी रुकू नंबर 11 आयत नंबर 102 से 109, उम्मते मुस्लिमा के लिए नुसरते इलाही पाने का नुस्खा, यानी रेसिपी है एक कि अल्लाह उम्मते मुस्लिमा की मदद कब करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक और मोहब्बत भरी पुकार है, आपके नाम आपके रब का एक ख़त है, आपकी कॉल आ रही है। क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आइए देखते हैं। ऐ ईमान वालो, अपने ऊपर लीजिए, इतनी दूर से आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आई है तो आप अपने रब को इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे? जी अल्लाह जी, क्या कहा? अल्लाह ताला से इतना डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो, और अल्लाह ताला की इस वक्त की नेमत को याद करो जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। बस इसकी मेहरबानी से तुम भाई भाई हो गए, और तुम आग के घड़े के किनारे पहुंच चुके थे तो इसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। जरा सा अपना दौरे जाहिलियत का वक्त याद कीजिए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या हरकतें थी, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या सोचते थे। अल्लाह ने ये कुरान पकड़ा कर क्या आपके ऊपर और मेरे ऊपर रहम नहीं किया? फिर आपको मुझे एक मैसेज दिया जा रहा है करने का काम। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ लाए और नेक कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरका डाला और इख्तलाफ किया। इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है जिस दिन बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़ सियाह, और सियाह चेहरे वालों से कहा जाएगा क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया? अब अपने कुफर का अजाब चखो। और सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में दाखिल होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन सच्ची यानी हक्कानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं। अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। क्या पता चला कि ईमान से भरा हुआ रुकू आपके मेरे लिए अल्लाह ताला की रहमतों को समेटता हुआ, और जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की इन बातों के ऊपर आप कान रखते हैं आपको इसमें से अपने लिए अमल के नुक्ते मिलते हैं। दो आयात हमने इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक देखी, 1 और 2 आले इमरान। या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। क्या पता चला कि तकवा का हसूल असल मकसूद है? कुरान पढ़ेंगे, ज़ालिकल किताबुल ला रैबा फी हुदल मुत्तकीन, रोज़ा रखेंगे, लअल्लकुम तत्तकून, तो बड़ा बड़ा लफ्ज़ लिखिए हसूले तकवा। हसूले तकवा ही हर इबादत का मकसूद है। जब ये मकसद पीछे पड़ जाता है तो नतीजतन फिरकेबाजी आती है। आज भी जितना लोग कुरान की रस्सी को थाम के चलेंगे उतना ज़्यादा फिरकों से बचेंगे। हर दौर के नबी ने ये बात अपने अमल से भी करके दिखा दी, साबित कर दी कि असल कुरान का जो मकसद है, जो इल्हामी किताबें होती हैं ना, इनका मकसद क्या होता है? तकवा, अल्लाह देख रहा है, आखरत, फिक्र, ये वो। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि लोगों ने अपने मनपसंद तरीके अख्तियार किए होते हैं कई चीज़ों के लिए। तो कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, मौजू पे नज़र रखिए, और जिस क्लास में से उठकर आपको लगे कि पता नहीं मेरे अंदर कितने कीड़े हैं, कितने मेरे गुनाह हैं, कितनी मेरी खराबियां हैं, क्या है मेरे साथ, और वो है और ये है, उतना ज़्यादा आप महसूस करके देखेंगे कि वो चीज़ आपके अपने लिए होगी। इसके बरक्स उधर देख, उधर देख, फलां क्या करता है, फलां के साथ ये मामला, फलां के साथ, तो याद रखिए फिर फिरके बनते हैं। जब सारे ही कुरान के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो कुरान के ऊपर नज़र होगी, और जब दूसरे होंगे तो फिर हर एक का अपना एक गिरोह होगा, हर एक का एक अपना सोच होगी, नुक्ते नज़र होगा। तो कुरान फहमी का सबसे खूबसूरत तरीका कि इसको पढ़कर रब महबूब हो जाए और महबूब को महबूब चीज़ देते हुए दुख से ज़्यादा खुशी होने लगे। और याद रखिए जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना, तो जैसे आप अपने बच्चों को शादियों में खुशी खुशी देते हैं, कभी आपने देखा किसी को रोते हुए बेटी को जहेज दे रही हो, बहू का जोड़ा लाई हो 5 लाख का, हाय क्या मुसीबत है, उस वक्त तो लाड है ना, चाओ है, यह है लंदन आलुल बिर्रा। इसलिए कि अल्लाह ताला को पाना एक ऐसी हकीकत को पाना है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, लिख लें अल्लाह को पाने वाला इस कायनात का हम सफर बन जाता है। जो लोग इस तरह के तासुब से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो हक को हर हाल में पहचान लेते हैं, चाहे उसका पैगाम इसराइली पैगंबर की जुबान से आए या फिर इस्माइली पैगंबर। बनी इसराइल जो मदीना में थे, उनका क्या मसला था? ये सगे सौतेले का फर्क था, जमात और गिरोबंदी का फर्क था। कहते थे बनी इसराइल से अगर ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते तो हम इनकी मानते, चूंकि ये वहां से नहीं आए तो अब हम नहीं मानेंगे। जिनकी नजरें अल्लाह पे हों, मैं आप सबको भी एक पैगाम दूंगी, हर दीनदार का एहतराम कीजिए, हर दीनदार की इज्जत कीजिए। बात जिसकी समझ आती है कुरान सुन्नत के मुताबिक, अमल उस पर कर लें, लेकिन कभी किसी फिरके जमात गिरोह का मजाक ना उड़ाएं। और यही अदब और मैनर अगर दीनदारों को आ जाए तो आज मीम्स ना बने, आज यूट्यूब पे एक दूसरे के खिलाफ वो जिहाद ना हो रहा हो जो मैदान जंग में जाके दुश्मनों के खिलाफ करना होता है। तो जो लोग गिरोह परस्ती की सतह पे जीते हैं ना, फिर उनको हर वक्त हक वही हक दिखता है जो उनके गिरोह वाले की जुबान से होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि गिरोह से बाहर किसी बंदे की बात सही लग रही होती है तो कहते हैं नहीं 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 हाय हाय, अगर ये हमारा होता तो मानते, हालांकि उस वक्त भी उनके दिल गवाही दे रहे होते हैं कि बात सही कर रहा है। तो फिरका परस्ती नहीं, खुलासा क्या है? हक को अपने गिरोह की निस्बत से जानना, ना कि अल्लाह की निस्बत से। इस बात की दलील है कि आपको भी अल्लाह ताला से मोहब्बत महसूस नहीं हुई। ऐसे हक का इकरार ना करना जिसके हक पर दिल गवाही दे रहा हो, ये अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जुर्म है। आपको इस वक्त कुरान सुनकर फ़ायदा हो रहा है, बस इस फायदे में दूसरों को शामिल कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए आप सुन रहे हैं, आप अल्लाह वाले हैं। और आप कहते हैं नहीं, ये मैं नहीं शेयर कर सकती, इसके ऊपर लोगों किसी और का है, जमात कोई और है, फिरका कोई और, अंदर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि लोग उधर चले गए तो हमारी कौन सुनेगा। हालांकि कई दफ़ा दूसरों की सुन के ही तो लोग आपकी कदर करते हैं कि नहीं, आपकी बात ज़्यादा दुरुस्त थी और बेहतर थी, और इसी तरह से अपने आप को वो ज़ाया करते हैं। तो खुद परस्ती बामुकाबला गिरोह परस्ती, अल्लाह इन चीज़ों को पसंद नहीं करता जो आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। एक और मैसेज भी इसका ले लीजिए, आयत नंबर 106 का ले लेते हैं। चलिए, फमल्लज़ी नस्वद्दत वुजूहुहुम, चेहरों की स्याही और सफेदी की बात है। तो लिखिए, इस दुनिया में फर्मा बरदारी करने वाले आखिरत में चमकते चेहरों से उठाए जाएंगे। आप देखिए, काम करके जो थकन होती है ना, वो फारिग रहकर सारा दिन बिस्तर तोड़ने से वो नहीं खुशी होती जो काम की थकन के बाद की खुशी होती है। वो लोग जिन्होंने दुनिया में दीन की असल रस्सी यानी तकवा को थाम लिया, वो कब्रों में सुकून से सोएंगे। तो ये दुनिया काम की जगह, वो दुनिया आराम की जगह। ये जो चेहरों की सफेदी और स्याही है ना, स्याही क्या है? रिग्रेट, हाय काम क्यों नहीं किया, सारा दिन घर फैला रहा, आप मेहमान आ रहे हैं, हाय अफसोस, हाय काम। आज आपका मेरा जिंदगी का खुलासा क्या होना चाहिए? कि हम बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगियों से फायदा उठाएं। और याद रखिए, ये काम कोई दूसरा आपको नहीं देगा। अच्छा मैं कोई काम दे देना, अच्छा मेरी ड्यूटी लगा देना, नहीं। जब इंसान खुद अपने ऊपर निगरान होता है ना, तो उसे किसी निगरानी की जरूरत नहीं होती, उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। वो करता है, वो सिस्टम में सब कुछ डालने के लिए अपनी चीज़ों को लिखता है, लेकिन उसे काम कराना कुछ मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद अपने ऊपर चौकीदार होता है। मसला क्या है कि हमारा ईमान भी तो पूरा नहीं है ना। याद रखिए, ईमान की दो किस्में होती हैं, एक कानूनी ईमान, आपके रिलीजन मज़हब के खाते में आपका नाम मुसलमान लिखा है, आप अपना पासपोर्ट जाकर देखिए, रिलीजन का लफ्ज़ लिखा होता है उधर, उसके नीचे इस्लाम होगा, आपकी आईडी पे हो सकता है, आपकी रिज्यूमे पे हो सकता है। लेकिन एक दूसरा ईमान होता है, असल ईमान वो है, वो अमली ईमान है, वो तकवा वाला ईमान है, वो तकवा जो इंसान को हर हाल में अल्लाह का बंदा बना दे, वो अमली ईमान होता है। वो आ जाए तो ऐसे बंदे की निगरानी करने की कोई ज़रूरत किसी को भी नहीं रहती, और ना आप उसके सर पे किसी को मुसल्लत कर सकते हैं। फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या हैं? कि अल्लाह की इताअत की जाए, ना फरमानी ना की जाए, इसका जिक्र किया जाए, इसे भुलाया ना जाए, और इसका शुक्र अदा किया जाए, इसका कुफर ना किया जाए। और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए।